ये जो हाँ दे आर रिटन द सिम्टम्स ऑफ प्योर डिवोशन राइट. सो एक शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है. क्लेश मतलब क्लेशाग्नि, क्लेशाग्नि. हाँ छह मैं बताया था. पहला है क्लेशाग्नि. क्लेशाग्नि का मतलब है हिंदी में इसका अनुवाद ऐसे हुआ है, शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है. राहत का मतलब हाँ चैन. अच्छा छुटकारा. ओके. दूसरा शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है. शुभदा. शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है. शांद्रानंद विशेष आत्मा. शुद्ध भक्ति विरल ही प्राप्त होती है. सुदुर्लभ. शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र के तुच्छ समझाते हैं. मोक्ष लघुताकृत. और छह शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है. तो ये छह का लक्षण, शुद्ध भक्ति का छह लक्षण है. शुद्ध भक्ति करने से सबसे पहले क्या होता है, क्लेश का नाश होता है और साथ साथ शुभ सारे कल्याण प्रदान करता है, करती है. तो ये क्लेशक नहीं और शुभदा. शुभ क्लेशक नहीं और शुभदा का लक्षण कैसा वर्णन हुआ था, जैसे बीज से जब अंकुर उद्गम होता है तो पहले दो पत्ता निकलता है ना. वो दो पत्ता का, दो पत्ता कौन कौन से पत्ते हैं, एक है क्लेशग्नि, दूसरा है शुभदा. इसका और भी आगे वर्णन हुआ है कि ये क्लेशग्नि जो है ये वैधि भक्ति का लक्षण है और शुभदा रागानुग भक्ति का लक्षण. ठीक है, वो विचार हम बाद में करेंगे. तो अब तो हम ये समझ रहे हैं कि भक्ति करने से क्या होता है, कष्ट का निवृत्ति होता है. कष्ट का निवृत्ति हुआ है हाँ, तो आप कह सकते हैं फिर तो मेरा सर दर्द होता है. हाँ, सर दर्द होता है, पैर दर्द होता है. तो ये जो कठिनाई दिखाई देता है तो हमको क्या समझना होगा, शुद्ध भक्ति करने से इसका भक्त का विचार कैसा है. जब तक हमारा ये शरीर है, मतलब जब तक हमारा चेतना हमारा शरीर में है तब तक हमें कष्ट प्राप्त होता है, होना ही होगा, क्योंकि ये शरीर कष्ट प्राप्ति का एक यंत्र है. जब तक शरीर है तब तक कष्ट भी रहेगा, परंतु भक्ति करने से कष्ट का निवृत्ति होता है, कम होता है. और शुद्ध भक्ति के प्रभाव से क्या अंत में क्या होता है, ये शरीर का जो चेतना है जिसे देहात्म बुद्धि कहा जाता है, ये शरीर का चेतना से हमारा शरीर का चेतना का पूर्ण रूप से निवृत्ति होता है, पूर्ण रूप से चेतना नष्ट हो जाता है. शरीर में चेतना नहीं रहता है. तब चेतना कहाँ रहता है, कृष्ण में रहता है, कृष्ण के चरण कमलों में रहता है. इसलिए शरीर में जो कुछ होता है भक्त का उसका अनुभव नहीं रहता है. शरीर देहात्म बुद्धि का मतलब, देहात्म बुद्धि का मतलब क्या है, ये शरीर को जो अपने समझना, शरीर को आत्मा समझने का जो प्रवणता वो नष्ट हो जाता है. कैसे, जब चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण पर और कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित हो जाता है तब चेतना कहाँ रहता है, कृष्ण के चरण में रहता है. तब ये शरीर का चेतना रहता है नहीं. इसका एक दृष्टांत ऐसे दिया जा सकता है, आपको कभी किसी को ऑपरेशन हुआ था, जिसका ऑपरेशन हुआ था, हाथ उठाइए। हाँ अच्छा, आपका ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, ऑपरेशन के समय क्या हुआ था, कहाँ कहाँ का ऑपरेशन हुआ था? अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, तो जब ऑपरेशन हुआ था तो आपको पेट को काटा था, तो कष्ट हुआ था जब काट रहा था? नहीं, क्यों नहीं? हाँ तब हाँ? एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स का हिंदी क्या है? हाँ? चेतना रोधक दवाई दिया गया था, है ना? तो उसके कारण यद्यपि आपको डॉक्टर ने आपको पेट काट रहा था, तो आपको कोई चेतना, कुछ ये अनुभव नहीं हुआ था। कैसे, क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि आपका चेतना शरीर में नहीं था। वो जो एनेस्थेटिक्स है, एनेस्थेटिक्स के कारण चेतना शरीर से लुप्त हो गया था, है ना? उस कारण नहीं, उसका अनुभव नहीं हुआ। तो अब बताइए, चेतना अगर पूर्ण रूप से कृष्ण के वहां चला गया है, तो शरीर का चेतना रहेगा? हाँ रहेगा। तो शरीर में अगर कुछ मुसीबत हुआ, तकलीफ हुआ, उसको अनुभव होगा? नहीं होगा। हाँ समझ गए हैं। तो देखिए, कृष्ण चेतना, कृष्ण के प्रति हम अगर चेतना को अर्पण करते हैं, जिसको हम कृष्ण भावना कहते हैं, ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति का मतलब क्या है? चेतना को कृष्ण के प्रति अर्पण कर देना। ये चेतना शरीर में नहीं रहेगा, भगवान का सेवा में रहेगा। तो भगवान का सेवा में जब चेतना रहेगा, तो शरीर का चेतना रहेगा। तो शरीर में कुछ हुआ तो उसका अनुभव होगा? नहीं होगा। तो देखिए, कृष्ण भक्ति करने से क्या होता है? क्लेश अग्नि, क्लेश का पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, नाश होता है। अच्छा, मिस्टर ही हैज कम, गिव हिम अ चेयर। क्या नाम है, रमेश जुनेजर, मिस्टर जुनेजर हैज कम, गिव हिम अ चेयर टू सीट। कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है? हम विचार कर रहा था कि जब चेतना भगवान के सेवा में अर्पित हो जाता है, तब ये शरीर का चेतना नहीं रहता। शरीर का कठिनाई, शरीर का केश क्लेश सारे नाश हो जाता है। तो ठीक है, आप समझ गए हैं क्लेश अग्नि। तो हम यहाँ अब भक्ति रसामृत सिंधु से कुछ श्रील प्रभुपाद का वाणी पढ़ेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए। भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? सारे कार्यों को त्याग कर भगवान को शरण में आए। कौन से श्लोक में? ओके, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासुते। वही भगवान ये भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीव को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं, वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सो पाप का जो कष्ट होता है, वो इस जन्म में मिलता है, पूर्व जन्म में भी मिलता है, और पूर्व जन्म का पाप का फल भी इस जन्म में मिल रहा है, और पूर्व जन्म का पाप का फल इस जन्म में मिल भी नहीं रहा है और अगला जन्म में होगा। ऐसे पाप का जो फल का प्राप्ति वह स्वतः ही नहीं होता है, वो रह जाता है। हाँ, जिसके जिसके कारण हमारा जो पाप वो, हाँ, अगर हम एक एक साथ जमा करते हैं तो हिमालय पर्वत से भी ऊंचा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमारे इतने सारे पाप हैं, जन्म जन्म के कितने सारे पाप हम किए हैं, उसका जो संचय हुआ है उसको हम अनुमान भी नहीं कर सकते। तो उसका निवृत्ति कैसे करेंगे? पाप का निवृत्ति बहुत ही कठिन है। हम स्वयं अपने कार्य के द्वारा पाप का निवृत्ति होता है। कैसे होता है? पुण्य के द्वारा पाप का निवृत्ति होता है, परंतु पुण्य कर्म के द्वारा पाप कर्म का निवृत्ति थोड़ा बहुत हो सकता है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। तो हमारा इतना पाप जमा हुआ है, उस पाप के कारण हमें जन्म जन्म को इसका फल भोगना पड़ेगा। तो क्या होगा, क्या करेंगे हम? हाँ, और पाप के कारण हमें क्या मिलता है? पाप के कारण, पाप के फल स्वरूप हमें कष्ट मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए अब? हाँ, एक उपाय तो भगवान बताया, जैसे कि भगवान को शरण लेने से हमारा पाप हिमालय पर्वत जैसा हो, या बिंद पर्वत जैसा हो, या सुमेरु पर्वत जैसा हो, कोई मुश्किल नहीं। भगवान को भगवान के शरण लेने से जितने ही पाप हम कर चुके हैं, सारे पापों का तत्क्षणात ही उसका निवृत्ति हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? जो बुद्धिमान है वो क्या करेंगे? भगवान के शरण लेंगे। परंतु भगवान का शरण लेने में उसका जो रुकावट क्या है, इसका विचार भी करना होगा। भगवान का शरण लेने में रुकावट क्या होता है? भगवान का शरण लेने में कोई सारे रुकावट होता है। एक तो है अज्ञान। अगर हमें पता नहीं है कि भगवान का शरण लेने से क्या होता है, तो तब तक हम भगवान को शरण नहीं ले सकते हैं, है ना? और उसके पश्चात और दूसरा रुकावट क्या है? दूसरा रुकावट है हमारा अहंकार। अहंकार का मतलब, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं, मैं भगवान हूं, ये है अहंकार। मैं हूं भगवान। कुछ अनपढ़ आदमी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है, परंतु वो सब अनपढ़ है, इसलिए वो वैसे बोलते हैं। असल में उसको समझना चाहिए कि मैं भगवान हूं। तो ऐसे जो विचार हैं, ये है अहंकार। हम मुंह में नहीं, मुंह से नहीं बोलते हैं, फिर हमारा मनोभाव ऐसा रहता है, मैं सबसे बड़ा हूं, ये सारे दुनिया मेरा ही, मेरे लिए तैयार हुआ है, और इस सारे दुनिया में जितना कुछ मिल रहा है सब मेरे लिए ही है। बल्कि दूसरे सारे आदमी हमारा चीज चुरा कर लेकर भोग कर रहा है। तो ये जो है, ये है अज्ञान, अविद्या और अहंकार का फल। परंतु जब हम ज्ञान प्राप्त होते हैं, हमारा विद्या, हम पूर्ण रूप से जब हम सही ज्ञान प्राप्त होते हैं, तब हमारा मनोभाव कैसा होता है? तब हमारा मनोभाव होता है सब कुछ किसका है? भगवान का है। तो देखिए, अविद्या और विद्या दोनों में अंतर क्या है? जब मैं सोचता हूं कि सब कुछ मेरा है, ये अविद्या है। मैं सबसे बड़ा हूं, ये अविद्या है। मेरा सुख प्राप्ति के लिए ही सब कुछ करना चाहिए, यह अविद्या है। परंतु जब हम सही ज्ञान प्राप्त होते हैं तब हमारा विचार कैसा बनता है प्रदीप, कैसा बनता है? देखो, दीप से ज्ञान का प्राप्ति होता है। ज्ञान दीपे, ज्ञान दीपे न भाष्यत, ज्ञान रूप दीप। तो हम प्रदीप से हम कुछ सुनेंगे। बस हाँ, सब कुछ भगवान का है और मैं भगवान का नौकर। तो देखिए, अविद्या का विनाश हो गया है, सब कुछ भगवान का है और मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का नौकर। मैं बड़ा नहीं, मैं बहुत क्षुद्र हूं। ये जो भावना, ये भावना ही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का पहले कदम है। तो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर से बताइए, सब कुछ कौन किसका है? जो मानते हैं सब कुछ भगवान का है, आप हाथ उठाइए, और दो हाथ जब उठाइए तो बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की। सामान्यतया जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करते हैं, किंतु पाप कर्म के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि हम अज्ञान है और अज्ञान की वश पाप कर्म किया है, तो जमराज क्या सुनेंगे? जमराज मानेंगे? जमराज के पास जाकर बोलेंगे कि हमको पता नहीं था तो ये इसलिए मैं पाप कर्म किया, अगर मुझे पता रहता था कि पाप कर्म करने से सजा मिलेगा तब तो मैं नहीं करता था। तो जमराज क्या बोलेंगे? जमराज नहीं सुनेंगे। किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक्व होने होते हैं प्रारब्ध, और वे जो प्रौढ़ नहीं होते अप्रारब्ध। जो पक गया है, जो पाप कर्म पक गया है वो है प्रारब्ध, और जो अब तक पक्का नहीं है वो है अप्रारब्ध। फल, पाप का फल, फल जब तक नहीं पकेगा तब तक पेड़ से नहीं गिरेगा, तो पहले पकना होगा। तो पाप भी वैसा, पका हुआ पाप और अपक्य अप्रौढ़ पाप। तो जो पका हुआ उसको बोलता है प्रारब्ध, और जो पका नहीं है उसे अप्रारब्ध कहता है। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ या प्रारब्ध कहलाते हैं। जो पाप का फल हम अब भोग रहे हैं वो है प्रारब्ध, और जो हम भोग नहीं रहे हैं और बाद में भोग करना होगा, जब तक ना हम भगवान को भक्त बनेंगे, जिसको हम भोगना होगा उसे क्या कहा जाता है? अप्रारब्ध। प्रारब्ध और अप्रारब्ध, वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित हैं और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है, अप्रौढ़ अप्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरणार्थ हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हैं किंतु वो अभी तक उनके लिए बंदी ना बनाया गया है। ऐसा होता ना, कोई अपराध किया है, आजकल तो ये बहुत होता है, भारत का जो अदालत है को कोई कोई भी केस गया तो कम से कम 5 साल लग जाता है। उसलिए जो तो पाप करने में, बुरा काम करने में, अपराध करने में कोई डरता नहीं, क्योंकि वो सोचता है सजा तो नहीं मिलेगा, और एक तो हमें 5 साल तक उसका सुनाई नहीं देगा, अदालत में नहीं आएगा। और इसके अलावा तो हम पुलिस को हाँ ब्राइब कर सकते। ब्राइब को क्या हिंदी में कहते हैं?
रिश्वत।
ओके, रिश्वत, पुलिस को रिश्वत दे सकते हैं, जज को रिश्वत दे सकते हैं, और बाकी कितने सारे आदमी को रिश्वत देकर। ये देखिए भागवत का भी वाणी है, भागवत का वाणी ये है कि कली युग में जिसके पास पैसा है उसको दंड नहीं मिलेगा, जो पाप काम करते हुए भी जिसके पास अगर पैसा है उसको दंड नहीं भोगना होगा, और जिसके पास पैसा है, नहीं है, वो अगर पाप काम नहीं भी किया उसको दंड सजा मिलेगा। ये कलियुग का ऐसा आदत है। और इसका वर्णन बहुत सारे सुंदर वर्णन है भागवत में। और कलियुग में मनुष्य का सुंदरता का विचार कैसे होगा पता है आपको? बाल जितना लंबा होगा उसका सुंदरता उतना अधिक होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम कलियुग का कलियुग के वश में हम नहीं आना चाहते। ये शरीर का सुंदरता से क्या आता जाता है? वैसे बहुत आदमी हैं जिसको देखने में बहुत सुंदर है बल्कि जिसका मनोभाव बहुत गंदा है, उस आदमी के पास कोई जाएगा दूर से उसको बहुत अच्छा लगता है, सोचता है वो कितना सुंदर आदमी है, बल्कि पास में जाते हैं तो देखते हैं कितना गंदा आदमी है। और दूसरे कोई आदमी देखने में उतना खूबसूरत नहीं है परंतु उसका मनोभाव बहुत सुंदर है, हर आदमी उसके पास जाते उसको चाहते हैं। तो हमको कैसा बनना चाहिए, बाहर का सुंदरता या अंदर का सुंदरता? और ये अंदर शुद्ध और सुंदर कैसे बनता है? हाँ, भगवान का भक्ति करने से हमारा सुंदरता का अंतर का सुंदरता का प्रकाश होता है। आजकल का क्या हो रहा है, सब बाहर का सुंदर बनना चाहता है। 70 साल बन हो गया है तो फेस लिफ्ट करते हो, चमड़ा ढीला हो जाता है तो ऑपरेशन करके चमड़ा को टाइट कर देते हैं। और जब पूछते हैं आपका उम्र कितना है तो बोलते नहीं है। ऐसे करके फायदा क्या होता है? परंतु हमको याद रखना चाहिए कि जब तक हम जिएंगे ऐसे जिएंगे कि सारे दुनिया हमको चाहेंगे। लिव इन सच ए वे दैट एवरी द एंटायर वर्ल्ड विल वॉन्ट यू एंड डाई इन सच ए वे व्हेन द एंटायर वर्ल्ड विल क्राई फॉर यू। हाँ, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तो सारा दुनिया हमको चाहेंगे, और जब हम मृत्यु होगा मृत्यु के पश्चात सारा दुनिया हमारे लिए रोएंगे। ऐसा जीवन ही होना चाहिए ना? अगर ऐसे जीवन हो ना के अलावा अगर होता है कि ऐसे जीते हैं कि कोई हमको नहीं चाहता है और मृत्यु के पश्चात बोलते हैं कि अच्छा हुआ चला गया। तो ऐसा जीवन हमें नहीं बिताना चाहिए, सुंदर जीवन यापन करना चाहिए। यही है हमारा जीवन का मूल उद्देश्य। किंतु जो ही उसका पता चल जाएगा तो ही वो बंदी बना लिया जाएगा। मतलब पाप का उसका पाप हुआ बल्कि पाप का अपराध किया है पर उसको बंदी नहीं बनाया गया, परंतु कभी ना कभी तो उसको पकड़ा जाएगा और उसके बाद उसको सजा मिलेगा, है ना? इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं, जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। तो पाप के फल स्वरूप हमें कष्ट मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं कि भक्त बनने से कष्ट नहीं होगा। शरीर का कष्ट हो सकता है, परंतु चूंकि हमारा चेतना शरीर में नहीं है तो वो कष्ट हमारा कष्ट नहीं है। तब हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। जब हम भगवान को भक्त बनते हैं तब हमें ये पूर्णतया ये हमें जानकारी या उपलब्धि हो जाता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं, और हम हमारा आत्मा स्वरूप में हम भगवान का सेवक है, भगवान का नौकर है, दास है। इसी प्रकार इस प्रकार पाप कर्मों एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती हैं, और बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। वो अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है, और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों के मोल लेता रहता है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है, या अशिक्षित रह जाता है, अथवा बदसूरत दिखता है, तो उन्हें प्रौढ़ प्रापक पाप कर्मों प्रारब्ध का प्राकट्य जानना चाहिए। ऐसे अनेक विगत पाप कर्म के फल हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं, और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। तो ठीक है, समझ गए हैं ना? पाप का फल की स्वरूप हमें कष्ट मिलता है। कोई कष्ट अभी मिल रहा है, कोई कष्ट बाद में मिलेगा। जो अभी मिल रहा है उसे क्या कहता है? प्रारब्ध। और जो बाद में मिलेगा वो है अप्रारब्ध। जो नहीं मिला है अब तक वो है अप्रारब्ध। ये सब एक लंबी श्रृंखला के अंग हैं। जब किसी के कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने के निश्चित कर पाना प्राय अत्यंत कठिन होता है। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, उसमें कुछ समय लगता। जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण के फलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह हमारे पाप कर्मों के बीजों के फलीभूत होने से रोकने का व्यावहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावना मृत में संलग्न होना। तो हम अगर हमारे पाप से जिसे बोलता है वैक्सीनेशन एंटी ना वैक्सीनेशन की वाले एंटीडोट एंटी एनीवे ओके रोग के रुकावट के लिए क्या करना चाहिए? वैक्सीन लेते हैं, प्रिवेंशन लेते हैं, दवाई लेते हैं, परंतु उससे रोग का ये होता है, परंतु पूर्णतया रोग का निवृत्ति नहीं होता है। एक रोग का निवृत्ति हो सकता है, परंतु बहुत सारे और रोग रह जाते हैं जिसके कारण कभी ना कभी हमें कष्ट भोगना पड़ता है। तो पूर्णतया अगर हम रोग से निवृत्ति करना चाहते हैं तो हमको क्या करना है? हमें ऐसी स्थिति प्राप्त होना चाहिए जहां रोग का कोई लक्षण नहीं रहेगा, अर्थात हमारा पाप का जो फल है वो पाप का फल से पूर्णतया हमें मुक्त होना चाहिए। तो वो कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में संलग्न होने से ही केवल हम पूर्णतया मुक्त हो सकते हैं। इसका और एक दृष्टांत दिया गया है कि कुछ कारणवश हमें कष्ट मिल रहा है तो उसको हम नाश करते हैं, परंतु जब तक, जैसे पेड़ के फल, सारे फल को हम विनष्ट कर सकते हैं फिर भी पेड़ से फल निकलेगा, है ना, एक 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 साल के बाद फल आता रहेगा, परंतु अगर हम सारे पेड़ को उतार दिया मूल के जड़ के साथ, जड़ समेत अगर पेड़ को निकाल दिया है तब और फल फलेगा। तो कृष्ण भक्ति में आने का मतलब होता है कि सारे जड़ समेत पेड़ को निकाल दिया। तापोत्रयन उन्मूलनम, मूल का मतलब है जड़ और उन्मूलनम मतलब मूल सहित उसको निकाल दिया। एक दृष्टांत तो ये है। अच्छा, ये इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी भगवत श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वो एक वेश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बन गया था। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने मात्र ही पापी होते हुए भी उसे बचा लिया गया। एक बार केवल भगवान का नाम लिया था, वो जिंदगी भर, सारा जीवन भर कितना पाप किया, बहुत पाप किया, चोरी किया, डकैती किया, मनुष्य का हत्या किया, कितना सारे पाप किया था, परंतु मृत्यु के समय जमदूत आया उसको लेने के लिए, और जमदूत को जब देखा तो बहुत डर गया था, और डर के मारे वो अपना जो छोटा बच्चा था उसका नाम था नारायण, तो उसका नाम पुकारा, नारायण नारायण, और नारायण का नाम लेते ही वहां विष्णु दूत आ गया, भगवान का दूत आ गया, विष्णु दूत ने आ गया और आके जमदूत को रोक दिया, बोलो, ये बोला कि ये अब तुम्हारा हवाले में नहीं है, इसको छोड़ दो। वो बोला कि ये बहुत पापी है, जमराज की वहां लेने के लिए हम आए हैं इसको। तब विष्णु दूतों ने उनको समझाया कि चूंकि वो भगवान का नाम लिया है, एक बार भगवान का नाम लेने से उसका सारे पाप का नाश हो गया था, अब सारे पाप जो था वो खत्म हो गया, उसमें उसके और कोई पाप नहीं, तो इसलिए वो अब हमारे हवाले में आ गया है, और चूंकि वो भगवान का नाम लिया है तो वो अब हमारे हवाले आ गया। तो देखिए भगवान का नाम लेने से कितना फायदा होता है, और इसके बारे में ये भी वर्णन हुआ है, अजामिल जो नाम लिया था वो भगवान का नाम नहीं लिया था, अपना बच्चा का नाम लिया था, वो नाम नहीं था, वो नाम का आभास था, नाम आभास के रूप से ही, नाम आभास के फल के कारण वो सारे पाप से मुक्त हो गया। तो आप देखिए शुद्ध नाम लेने से क्या फायदा होगा, कितना लाभ होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, यह भी देखिए श्रीमद् भागवत में ही एक अन्य साक्ष्य है जिसमें सनत कुमार कहते हैं, सनत कुमार कौन है, ब्रह्मा के पहला चार पुत्र में से एक है सनत कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। सनत कुमार ने कह रहे हैं, हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वो उसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बांधा है। हमारा अहंकार क्या करता है, एक रस्सी से जैसे किसी एक जानवर को बांधा जाता है, इस भौतिक जगत में हमको हमारा अहंकार वैसे बांध के रखा है। तो आप बताइए, ये अहंकार रहना चाहिए या अहंकार को त्यागना चाहिए? अहंकार को त्यागना चाहिए। कहीं रस्सी से अगर बांधा है तो हम क्या चाहते हैं कि वो रस्सी से बांधा रहे, नहीं क्या हम बोले ये रस्सी कितना सुंदर है, इस रस्सी से हमको कितना मजा मिल रहा है, हम बोलते हैं नहीं। ये अविद्या अज्ञान के कारण हम अहंकार के वश में ऐसे रह जाते हैं, परंतु हमें इस अहंकार से मुक्त होना चाहिए। तो अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, किंतु महान योगी या कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते। अतएव प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो मिथ्या अहंकार की दृढ़ गांठ के काटने एवं भौतिक कार्य में व्यस्तता से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्य में अपने को लगाए। कृष्ण भावनामृत कार्य में लगाने का, अपने आप को लगाने का जरूरत क्या है? क्योंकि अहंकार से मुक्त होने का वही केवल एकमात्र उपाय है। इसके अलावा अहंकार से मुक्त होने का और कोई तरीका या उपाय नहीं है। जैसे योग करते हैं योगी, क्या होता है, अहंकार से मुक्त होता है नहीं, उसका अहंकार और बढ़ जाता है, हम कितना कर सकता, मेरा क्या योग सिद्धि हुआ है, अहंकार बढ़ गया है या कम गया है? अहंकार बढ़ गया है, ये बढ़ा देता है ये सारे, ये जो कर्मकांड का जो क्रिया है या योग सिद्धि के या तपस्या या यज्ञ, ये जो सब हैं, इससे अहंकार का अहंकार से मुक्ति नहीं होता है, छुटकारा नहीं होता है, परंतु अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार से मुक्त होने का केवल एक ही मात्र तरीका है, वो तरीका क्या है, मैं हूं दास तुम्हारा, मैं भगवान का दास हूं। जो अपने आप को दास नौकर समझता है उसमें कुछ अहंकार रहता है नहीं, वो जो अहंकार नहीं, उसमें उसका स्वरूप का प्रकाश होता है, मैं भगवान का दास हूं, मैं ये, इसका वचन दो तरह होता है, एक मैं भगवान का दास हूं और एक मैं भगवान का दास हूं, परंतु ये अहंकार नहीं है। जैसे हनुमान रावण के पास जब गया, क्या बोला, ए तू क्या है, तू तो एक मामूली राक्षस है, हाँ? ऐसे बताया था, हाँ? और वो बोला, वो देखा रावण सिंहासन में बैठा है, हाँ? ये हनुमान नहीं, सुग्रीव बाली का पुत्र का नाम क्या था, हाँ? अंगद, अंगद रामचंद्र के दूत के रूप में गया रावण के पास, तो देखा रावण सिंहासन में बैठा है, हाँ? तो बोला ये मामूली एक राक्षस, हाँ? ये ऐसे सिंहासन में बैठा है और मैं तो भगवान का दास हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, मैं भगवान का मैसेंजर हूं, दूत हूं। तो वो क्या किया, अपना लंगूर से एक सिंहासन बनाया, वो रावण से भी ऊंचा हो गया। ये जो है ये अहंकार नहीं, हाँ? ये अभिमान, भगवान, मैं भगवान का दास हूं, ये गर्व, घमंड, हाँ? मैं भगवान का दास हूं, हाँ? तू तो एक राक्षस है, तू क्या है, हाँ काल तुरा तेरा मृत्यु होगा। भगवान आज तू राजा बना है, राक्षस का स्वर्गलोक भी अधिकार कर लिया है, परंतु तो तेरा मृत्यु अब होने वाला है और जमराज तेरा विचार करेगा। ये है भक्त का मनोभाव। भौतिक दृष्टिकोण से कितना भी बड़े आदमी हो सकता है, परंतु भक्तों के सामने वो सारे मामूली इंसान है। तो भक्त में भी ऐसे घमंड रहता है, परंतु वो अहंकार नहीं है। मिथ्या अहंकार की ये गाढ़ गांठ अज्ञान के कारण है। अज्ञान के कारण मैं भोगता हूं। भगवान को जब तक हम नहीं पहचानता है, तब तक मैं अज्ञान में हूं। जब हम भगवान को पहचान लिया और आपने आप को भगवान को नौकर के रूप में पहचान लिया, बस तब अज्ञान दूर हो गया। वास्तविक ज्ञान की ये अनभिज्ञता की भी कृष्ण भावनामृत के द्वारा दूर की जा सकती है। जैसा कि पद्म पुराण में पुष्टि हुई है, कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है, और ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दावाग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। इस प्रसंग में ये उदाहरण ये बताने के लिए दिया गया है कि चारों ओर फैली दवाग्नि जंगल के सारे सर्पों को स्वतः नष्ट कर देती है। जंगल की भूमि पर अनेक सर्प रहते हैं, किंतु जब जंगल में आग लगती है तो उससे सूखी पत्तियां जल जाती हैं, जिससे सर्प भी अग्नि की चपेट में तुरंत आ जाते हैं। चौपाए जानवर अग्नि से दूर भाग सकते हैं या भागने का प्रयास तो कर सकती हैं, प्रयास तो ही कर सकते हैं, लेकिन सर्पों का तुरंत सफाया हो जाता है। इसी तरह कृष्ण भावनामृत की प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल होती है कि अज्ञान के सर्प तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। तो आप क्या करना चाहिए? कृष्ण भक्ति को अवलंबन करना चाहिए। ठीक है, तो कल हम विचार करेंगे कैसे कृष्ण भक्ति सर्व मंगलकारी है। शुभदा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? परंतु जब तक भगवान को नहीं माना तो तब तक क्या वो विद्या में था, ज्ञान में था या अज्ञान में था? तो माया के प्रभाव से उसका अपना परिचय भूल बैठा था, असल परिचय भूल गया। वो भगवान का दास था, भगवान का द्वारपाल था, पर भौतिक जगत में आने के पश्चात वो भूल गया था। तब वो क्या किया, भगवान को अपना शत्रु समझकर भगवान के साथ विरोध किया था, और उसका फल स्वरूप क्या मिला? भगवान के हाथ में उसका मृत्यु। तो भगवान का हाथ में जब असुर का राक्षसों का मृत्यु होता है, उससे भी वो मुक्त हो जाता है। भगवान का महिमा, भगवान का प्रभाव इतना ही सुंदर है। अगर भगवान के हाथ से मृत्यु भी होता है, वो भी मुक्ति के कारण बन जाता है। तो देखिए, भगवान का शत्रु बनकर भगवान का हाथ से मृत्यु होने से अगर मुक्ति मिल जाता है, तो भगवान का नौकर बनने से, भगवान का सेवा करने से क्या फायदा होगा, क्या फल मिलेगा? हम स्वतः ही कल्पना कर सकते हैं। यस पारुल।
तो
मनुष्यतर जो प्राणी हैं, जानवर, पंछी, चिड़िया, ये सब जो हैं, कीड़े, पेड़ पौधे, ये जो हैं, इसका चेतना विकसित नहीं हुआ है। इसका चेतना या तो आच्छादित है या तो संकुचित है। इस चेतना में उसको ये पूछने का अवकाश नहीं होता है कि भगवान है या नहीं, मैं कौन हूं। एक जानवर सोच सकता है, परंतु मनुष्य नहीं सोच सकता है। और जब तक मनुष्यों ने ये चिंतन प्राप्त नहीं होता है कि मैं कौन हूं, भगवान है या नहीं, ये अन्वेषण करना जब तक शुरू ना होता है, तब तक हमारे शास्त्र के विचार से वो लोग मनुष्य नहीं है। वो है मनुष्येतर, मनुष्य से नीचे है। शरीर है मनुष्य का, परंतु उसका चेतना मनुष्य का नहीं बना। अर्थात ये पशु प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति क्या है, पशु प्रवृत्ति होता है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। जब तक मनुष्य ने इस आहार, निद्रा, भय, मैथुन में मग्न रहता है, तब तक वो मनुष्य नहीं बनता है। ये इसके आगे बढ़कर जब ब्रह्म जिज्ञासा का शुरू होता है कि मैं कौन हूं, भगवान है या नहीं, भगवान का साथ मेरा संपर्क क्या है और कैसे मैं भगवान को सेवा कर सकता हूं, ये जब चिंतन का विकास होता है, तब इसे ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है। तब से मनुष्य जीवन का शुरू होता है। तो आप देखो इस भक्ति, इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करना कितना जरूरी है। तुम प्रचार कर रही हो, सबको प्रचार करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। तुम तो समझ गए हैं, अब दूसरे को समझाना चाहिए।
मैं पूछना चाहता हूँ, अगर तो मनुष्य मरते समय अज्ञान के कारण नाम नहीं ले सके भगवान का और किसी बारे में सोचे तो क्या वो अगले जन्म में उसी रूप में आएगा?
हाँ, मृत्यु के समय जिस चिंतन के चिंतन लेकर अपना शरीर छोड़ेंगे, उसके अनुसार उसका अगला जन्म मिलेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, अच्छा से तैयारी करना चाहिए। जब परीक्षा के आगे तुम क्या करते हो, परीक्षा के पहले अच्छा से पढ़ाई करते हो ताकि परीक्षा के समय अच्छा से आंसर दे सकते हो, है ना। जितना अच्छा प्रिपरेशन करेगा उतना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। तो वैसे ही इस जीवन में हम जितना सुंदर रूप से हम अपने आप को तैयार करेंगे, और परीक्षा कब होगा, आखिरी समय, मृत्यु के समय, तो उस समय के लिए अच्छे तरह तैयारी करना चाहिए, है ना। और तैयारी कैसा करना चाहिए, 100% मार्क्स कैसे मिलेगा इस परीक्षा में, आप अगर भगवान को याद कर सकते, है ना। हाँ, मुश्किल ये हुआ कि कुछ कारणवश हम भगवान से मुंह घुमा लिया था, भगवान के नहीं तरह, भगवान का तरफ ना देखकर हम और कहीं देखा। हम तो ऐसे भगवान की तरफ देख रहा था, कोई कारणवश अगर दूसरा और देख लिया, हम मुंह को मोड़ लिया, तो कहाँ क्या देखा, वहां वहां भगवान का जो बहिरंगा शक्ति इस भौतिक जगत को दर्शन हुआ। तो भौतिक जगत हमसे उत्कृष्ट है या निकृष्ट है, निकृष्ट है। तो जो निकृष्ट है उत्कृष्ट के साथ, उत्कृष्ट जब निकृष्ट के सामने आते हैं तो उसका मनोभाव कैसा होता है? जब बड़े आदमी कोई छोटे आदमी के सामने आते हैं तो बड़े आदमी का मनोभाव कैसा होता है? हाँ, उसको उसको एक्सप्लॉइट करना है ना। तो देखो, मुंह मोड़ने के कारण हम में इस भौतिक जगत को भोग करने का प्रवणता का प्रकाश, जिसके कारण हम अहंकार के चक्कर में फंस गए। अहंकार का मतलब हमारा मिथ्या परिचय है ना। हमारा असल परिचय क्या है? हम भगवान का दास है, पर ये माया को ये देखने के से हम क्या सोचने लगा, मैं इस जगत का, इस भौतिक जगत का मैं मालिक हूं, ये मेरा भोग करने का जगह है ना। तो इस कारण हम जो भगवान का दास है ये भूलकर हम ये भौतिक जगत का प्रभु बनने का वासना किया, वो है अहंकार। तो देखो, एक थोड़ा सा गलती होने से कैसा हम इस भौतिक जगत, कैसे हम इस भौतिक जगत में फंस गए हैं। सरला, माया भगवान के ओर से मुंह मोड़ने से हम माया को देखते हैं, तो वहां नहीं है माया, उसके चक्कर छोड़ो। आप कहां हो तुम? आप कहां हो? गोलोक वृंदावन में हो या माया में हो? तो आप क्या करना चाहिए? भगवान से मुंह मोड़ने के कारण हम माया में फंस गए हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान के ओर मुंह फिराना है। वही हम करने का कोशिश कर रहे हैं। केवल भगवान को ही देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे, ठीक है? शिक्षा मिल गया है ना, वंस बीटन ट्वाइस शाय। देखो, एक छोटा सा गलत फहमी के कारण हमें कितना मुसीबत हो गया है, तो अब क्या करना चाहिए? मुंह को उस तरह घुमाना चाहिए भगवान की ओर, अर्थात हर समय भगवान को ही याद करना और कभी भी भगवान को भूल नहीं जाना। हर समय भगवान को याद रखना, कभी भी भगवान को नहीं भूलना, ठीक है? इसका मतलब है कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावनामृत। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।